अन्वय घर पहुंचा। जैसे ही उसने गेट से अंदर कदम रखा, उसकी नजरें आनिया पर पड़ी। आनिया उठ चुकी थी। वो बेड के पास खड़ी अपने कल धोए कपड़े फोल्ड कर रही थी। अन्वय के कपड़े वहां नहीं थे। वो समझ गया कि आनिया ने उसके कपड़े नहीं छुए थे। आनिया ने नजरें उठाकर उसे देखा तक नहीं और कपड़े बैग में रख लिए। उसने जो सामान निकाला था वो भी अंदर रख लिया। बैग बंद करने के बाद उसने अपना पिट्ठू बैग पीछे टांगा और दूसरे बैग के हैंडल को पकड़कर बाहर जाने लगी। अन्वय गेट के पास खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। आनिया उसके साइड से निकलने लगी। अन्वय खिसक कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ कोई मुझ पर अपना हुक्म न चलाए, जहाँ आज़ादी हो मुझे अपने मन से हंसने की, बोलने की। आनिया ने बिना उसे देखे ही जवाब दिया और दूसरी तरफ से जाने लगी। अन्वय एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, और ऐसी जगह कहाँ है जहाँ तुम अपनी मर्जी से जो चाहो कर सको, कोई तुम्हें कुछ न कहे? मुझे नहीं पता, पर मैं अब किसी के साथ नहीं रहूंगी, अकेली रहूंगी, अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीऊंगी। आनिया ने अब उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया। अन्वय कुछ पल खामोशी से उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर उसके हाथ से बैग लेते हुए बोला, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? आप मुझे कोई खरीद कर नहीं लाए हैं जो मैं आपके इशारों पर नाचूं, आनिया ने तुनकते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर अन्वय ने उसकी निगाहों में गहराई से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें नाचने कहा भी नहीं है। तुम मेरे साथ आई थी तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना। इसलिए जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती और तुम्हारे रहने का कोई दूसरा ढंग का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। और बेहतर होगा अगर तुम दोबारा मेरे सामने ये खरीदने बेचने की बात ना ही करो, क्योंकि मैं कोई दलाल नहीं हूं जो लड़कियों को बेचूं या खरीदूं, और मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मुझे उन घटिया लोगों में शामिल करो। देखा, बस इसीलिए नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए बस तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, यही जरूरी है। मेरी इच्छाओं से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वहां किसी को नहीं पड़ता था, आनिया ने चिढ़ते हुए उसे उंगली दिखाते हुए कहा। अन्वय उसे गुस्से से घूरने लगा। आनिया ने भी उसे घूरते हुए आगे कहा, और ये तुम्हारी काली काली बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, जिन्हें दिखाकर तुम हमेशा मुझे डराने की कोशिश करते हो, पर मैं डरूंगी नहीं। मुझे जो कहना है मैं वो कहकर ही रहूंगी। तुम एक नंबर के सेल्फिश, अकड़ू और घमंडी इंसान हो। हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमते रहते हो, ना खुद कुछ कहते हो ना मुझे बोलने देते हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती। मैं आनिया नॉनस्टॉप बोले जा रही थी कि अचानक ही अन्वय ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। आनिया अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगी। एक बार फिर उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। अन्वय ने उसे घूरते हुए कहा, कौवा खाती हो क्या? क्या हो क्या, नॉनस्टॉप बोलती ही जाती हो। इतना अत्याचार मत किया करो अपने मुंह पर, कभी थोड़ा आराम भी दे दिया करो और कभी दूसरों को भी बोलने का मौका दे दिया करो। तुम्हारी बकवास से ज्यादा जरूरी भी कोई बात हो सकती है जो सामने वाला कहना चाहता हो। अब अन्वय बोले जा रहा था और आनिया पलके फड़फड़ाते हुए उसे देखे जा रही थी। अन्वय ने उसकी पलकों को घूरते हुए कहा, ये सही है तुम्हारा, या तो मुंह चलेगा नहीं तो तुम्हारी पलके फड़फड़ाएंगी। बंद करो अपनी पलकों को झपकना, मुझे इरिटेशन हो रही है इनसे। बेचारी आनिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली ताकि पलके ना फड़फड़ाए, और आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी। अब तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अन्वय उसकी मासूमियत में खोने लगा और भूल ही गया कि वो आगे क्या कहने वाला था, पर उसने खुद जल्दी ही संभाल लिया और उसके चेहरे पर से नजरें हटाते हुए कहा, अब तुम तब तक कुछ नहीं कहोगी जब तक मैं ना कहूं, और ना ही अपनी पलकों को फड़फड़ाओगी। एम आई क्लियर? आनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखती रही। अन्वय को एक बार फिर गुस्से ने घेर लिया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बात सुनाई नहीं देती क्या जो कभी कोई जवाब नहीं देती? कुछ पूछा है मैंने, मेरी बात समझ आई या नहीं, जवाब दो। आनिया ने अब उसके हाथ की तरफ नजरें घुमाई जो अब भी उसके मुंह पर था। अन्वय ने तुरंत ही उसके मुंह पर से अपनी उंगली हटाते हुए कहा, मुंह बंद था तो पलकों को झपक कर भी बता सकती थी कि समझ गई हो मेरी बात। आनिया उससे दो कदम पीछे हट गई। बेचारी की तो सांसें अटकी हुई थीं, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसके कानों में अन्वय की आवाज पड़ी और वो खींचते हुए बोली, तुमने ही पलके झपकने को मना किया था तो मैं क्या करती? मैंने तो बोलने के लिए भी मना किया था, कितनी ही बार कर चुका हूं, पर कभी वो तो नहीं मानती, अन्वय ने व्यंग्य से उसे घूरते हुए कहा। आनिया ने मुंह बनाकर अपना चेहरा घुमा लिया। अन्वय कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर उसने कहना शुरू किया, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, तुम पर अब कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा, जैसे चाहो वैसे रह सकती हो तुम यहां, तुम्हें अपनी मर्जी से सब करने की आजादी है, बस अपना मुंह हो सके तो बंद रखना, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। उसके इतना कहते ही आनिया की घूरती निगाहें उसके तरफ घूम गईं। अन्वेई चिढ़कर बोला, कमॉन, सारे एडजस्टमेंट मैं ही तो नहीं करूंगा, थोड़ा तुम्हें भी कोऑपरेट करना होगा। हम दोनों अगर यहां रहेंगे तो एक दूसरे के लिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा, दोनों को ही। आनिया ने अकड़ते हुए नजरें घुमा ली। अन्वेई ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। तभी उसके कानों में आनिया की आवाज पड़ी, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बकबक से परेशान नहीं करूंगी, यहां से जाऊंगी भी नहीं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अन्वेई उसे तीखी नजरों से घूरने लगा। आनिया ने अपना बैग पकड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं माननी तो मैं चली जाती हूं यहां से। क्या होगा बाहर, सड़कों पर अकेली भटकूंगी, कोई राह चलता आवारा अगर मिल गया तो वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो क्या है ना, मैं एक लड़की हूं, जवान हूं, खूबसूरत भी हूं, तो मेरा यूं अकेले बाहर रहना सेफ नहीं है। ये दुनिया बहुत जालिम है, अकेली लड़की पर सबकी जिद्द की नजरें घड़ी रहती हैं कि मौका मिले और वो उसका शिकार कर ले। पर कोई बात नहीं, मुझसे फर्क ही किसे पड़ता है, क्या होगा अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर भी लिया तो, कोई मुझे बचाने थोड़े ना आएगा, मैं तो सबके लिए फालतू हूं, मर भी जाऊंगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आनिया ने बिल्कुल बेचारों जैसी शक्ल बनाई, जैसे जाने कितनी ही दुखी हो। उसने अन्वेई की कही बातें बड़ी ही चालाकी से उस पर ही दे मारी और अन्वेई अपने हाथ बांधे उसकी नौटंकी देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, टू गुड, क्या कमाल की एक्टिंग करती है ये लड़की, मासूमियत तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानती ही नहीं है, और चालाकियां तो उसके रगों में खून की तरह बहती हैं। मेरी ही कही बातें मुझे ही सुनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तेरे पास इस बेवकूफ लड़की की बात मानने के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। एक नंबर की पागल और सरफिरी लड़की है, जैसे तुझ पर विश्वास करके तेरे साथ यहां तक आ गई, पता चले बाहर गई तो किसी और के साथ चल पड़े। अकल तो इसमें जरा भी नहीं है, इंसानों को पहचानना भी नहीं आता, जो दो मीठे बोल ले उसी के पीछे चल देगी, और बाहर लोग इसके जैसे सीधे नहीं है, इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करने से पीछे नहीं हटेगा। तू इसे उनका शिकार नहीं बनने दे सकता, जैसी भी है तुझ पर विश्वास करती है, पहली नजर में उसने तेरे दिल में जगह बनाई है, भले ही उसे प्यार नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं रह सकता, पर उसकी सेफ्टी का ध्यान तो रख ही सकता है।
अन्वेई ने सारी सिचुएशन के बारे में गहराई से सोचा। आनिया अब भी तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी, अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि अगर कहीं अन्वेई ने उसकी बात नहीं मानी, उसे जाने दिया तो क्या करेगी, कहां जाएगी, पर अपना डर उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अन्वेई ने सब सोचने के बाद जैसे ही उसके तरफ निगाहें घुमाई, आनिया ने हड़बड़ाहट में उस पर से अपनी नजरें हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी हरकत पर ना चाहते हुए भी अन्वेई के लबों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जिसे उसने बड़ी आसानी से छुपा लिया और गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर आनिया अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी कि उसका नाटक काम कर गया। खुद को ही शाबाशी देने लगी कि कितनी अच्छी एक्टिंग करती है कि इस सख्त दिल इंसान को भी अपनी बातों में फंसाकर अपनी बात मनवा ली उसने। पर उसने भी गंभीर चेहरा बनाए रखा, खुशी को जाहिर ना करते हुए अकड़ते हुए बोली, मैं घर का काम करूंगी, तुम्हारा काम करूंगी, पर तुम मुझे रोकोगे नहीं। गलत, हम दोनों यहां रहेंगे तो घर का काम ऑल्टरनेट डे पर दोनों ही करेंगे, पर अपना अपना काम खुद करना होगा, दूसरा किसी के पर्सनल काम को छुएगा भी नहीं, तुम मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, आधा बेड तुम्हारा होगा और आधी अलमारी तुम्हारी होगी, तुम वहां जो मर्जी करो, पर मेरे हिस्से में आने की कोशिश मत करना, मेरे कामों में दखलअंदाजी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम अपने लिए खाना बनाओगी और मैं अपने लिए, हम रूममेट्स की तरह सिर्फ रूम और यहां की चीजों को शेयर करेंगे, दूसरे की जिंदगी में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। अन्वेई आगे कुछ कहता उससे पहले ही आनिया बोल पड़ी, ये गलत है, मेरी शर्त मानी जानी थी, तुम तो अपनी मनमानी चलाए जा रहे हो। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम जो चाहती हो उसे एक पेपर पर लिखो और मैं जो चाहता हूँ उसकी लिस्ट बनाता हूँ, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अन्वेई ने रास्ता सुझाया तो आनिया ने तुरंत हामी भर दी। दोनों पेपर लेकर बैठ गए। कुछ ही देर में वे पूरी लिस्ट बनाकर वापस एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने लिस्ट एक्सचेंज की और पढ़ने लगे। पहला पॉइंट पढ़ते ही आनिया हैरानी से बोली, दो घंटे तुम बाथरूम में क्या करते हो? अगर मुझे तब वॉशरूम जाना होगा तो मैं दो घंटे तुम्हारा इंतजार कैसे करूंगी? और बाथरूम में दो घंटे कौन लगाता है? मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मेरे लिए आधा घंटा मोर देन इनफ है, और तुम्हें दो घंटे चाहिए? अंदर सोते तो नहीं हो? कहीं तुम इंसान की जगह कोई और क्रिएचर तो नहीं हो जिसे पानी चाहिए होता है, इसलिए तुम बाथरूम को ही अपना घर समझ लेते हो? बकवास मत करो, मुझे फ्रेश होने, नहाने में और कपड़े वगैरह धोने में इतना टाइम लगता है, अन्वेई ने उसकी बकवास बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब आनिया अजीब नजरों से उसे घूरते हुए देखने लगी। अन्वेई को अजीब फील होने लगा। उसने चिढ़कर कहा, अब ये मुझे स्कैन क्यों कर रही हो? आनिया ने उसे देखकर सोचते हुए कहा, अब मैं समझी, तुम्हारी इतनी साफ स्किन का यही राज है, तुम घंटों तक बाथरूम में बैठे खुद को साबुन से रगड़ते रहते होगे, तभी दूध जैसे गोरे हो। उसकी बात सुनकर पहले तो अन्वेई हैरान रह गया, फिर उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं बाथरूम में कुछ भी करूं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुबह 6-8 बाथरूम मेरा है, अगर तुम्हें इस्तेमाल करना हो तो या तो इससे पहले करना होगा या फिर मेरे निकलने के बाद। आन्या ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर झट से बोली, ठीक है, एक बात तुम्हारी मानी गई तो अगली बार मेरी मानी जाएगी। मैं बेड के राइट साइड पर सोऊंगी और मुझे सोने के लिए लाइट की जरूरत होती है। अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती, इसलिए रात को लाइट्स ऑन रहेंगी और अलमारी का राइट पोर्शन भी मेरा होगा। तुम गलती से भी मेरे तरफ की अलमारी को हाथ नहीं लगाओगे। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी चीजों को देखने या छूने का। तुम्हें राइट साइड चाहिए तो ठीक है, रख लो, पर रात को लाइट्स ऑफ रहेंगी क्योंकि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। मुझे सोने के लिए आम इंसानों की तरह अंधेरे की जरूरत होती है। नहीं, मुझे अंधेरे में डर लगता है, मैं लाइट्स ऑन करके ही सोऊंगी, आन्या ने इनकार करते हुए कहा। अन्वय ने उसकी बात सुनकर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, कल रात को कोई कह रहा था कि उसे अंधेरा बहुत पसंद है और अब किसी को अंधेरे से डर लगता है। हाँ, तो मैंने कहा था कि मुझे रात के अंधेरे में चांद तारों को देखना पसंद है, ये तो नहीं कहा था कि मुझे अंधेरे से प्यार ही है। इंसान हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है बचपन से, नींद नहीं आती मुझे अंधेरे में, और मुझे उल्लुओं की तरह रात रात भर जागने का कोई शौक नहीं है, इसलिए लाइट्स ऑन रहेंगी रात को। आन्या ने तुरंत ही दलील पेश कर दी और साथ में अपना फैसला भी सुना दिया। क्रमशः